अध्याय संख्या 17 रचना शिक्षण। हमारे विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापक संस्कृत रचना की ओर ध्यान नहीं देते। उनके ध्यान न देने का एक प्रमुख कारण यह रहता है कि छात्रों के लिए संस्कृत में लिखना तथा बोलना बहुत कठिन प्रतीत होता है, किंतु मेरी समझ में यह स्वयं में कारण न होकर अध्यापकों की उपेक्षा का ही परिणाम है। कार्यकारण के संबंध को यहाँ लोगों ने उलट दिया है और कारण को ही कार्य समझ लिया है। छात्रों को संस्कृत की कठिनता एवं जटिलता का मिथ्या ज्ञान कराया जाता है, उसकी आड़ में संस्कृत के विरोधियों का मंतव्य पुष्पित एवं फलित होता है। यह स्थिति अवांछनीय है। संस्कृत के अध्यापकों को भी रचना के क्षेत्र में आवश्यक कार्य करना चाहिए। विचाराभिव्यक्ति के दो रूप। विचारों की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। मौखिक अभिव्यक्ति प्राकृतिक है। सर्वप्रथम बालक अपनी मातृभाषा के माध्यम से आत्म प्रकाशन करता है। वर्तमान भारत में संस्कृत के मौखिक रूप में भावाभिव्यक्ति की शक्ति नैसर्गिक नहीं कही जा सकती। संस्कृत में मौखिक आत्म प्रकाशन व्यक्ति के अध्ययन का परिणाम है। संस्कृत भाषा में विचाराभिव्यक्ति दोनों रूपों में अध्ययनात्मक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही भाषा के प्रमुख कौशल हैं। उच्च स्तर पर छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दोनों प्रकार के कौशलों में दक्ष हो, किंतु माध्यमिक स्तर तक के संस्कृत छात्र से हम केवल यही आशा करते हैं कि वह सरल संस्कृत के माध्यम से मौखिक तथा लिखित रूप में भावाभिव्यक्ति कर सके। लिखित रचना मौखिक रचना से अधिक स्थायी है। लिखित रचना में सोचने विचारने का समय रहता है एवं व्याकरण की दृष्टि से उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। मौखिक रचना तात्कालिक एवं सामयिक होती है, किंतु मौखिक एवं लिखित रचना को पृथक रूप से पढ़ना ठीक नहीं है। वस्तुतः दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध भी है। बिना मौखिक भावाभिव्यक्ति के दक्ष हुए उच्च कोटि की लिखित रचना संभव नहीं है और बिना लिखित रूप से भावों को निबद्ध किए हुए मौखिक भावाभिव्यक्ति क्रमबद्ध एवं स्पष्ट नहीं हो सकती। यदि लिखित रचना के पूर्व किसी विषय पर मौखिक रूप से विचार विमर्श कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, और किसी विषय पर वक्तव्य देने से पूर्व उस विषय की मुख्य बातों को पहले लिख लिया जाए तो और भी अच्छा रहता है। रचना शिक्षण के उद्देश्य। मौखिक रचना का उद्देश्य बालकों को सरल एवं शुद्ध शब्दों से अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना है। संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक स्तर कक्षा 6, 7, 8 पर बालकों को इस योग्य बताना रहता है कि वे प्रश्नों का उत्तर सरल किंतु पूर्ण वाक्य में दें। मध्य स्तर पर उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अपने अनुभव को स्वाभाविक रूप से संस्कृत में व्यक्त कर सकें। उच्च स्तर पर छात्रों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सरल संस्कृत में वार्तालाप कर सकें तथा अपने भावों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। माध्यमिक स्तर तक अर्थात कक्षा 12 तक छात्रों में इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि वे संस्कृत के माध्यम से निम्नलिखित रचना कार्य कर सकें। प्रथम, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना। द्वितीय, सूक्तियों का प्रयोग। तृतीय, वार्तालाप के द्वारा विशेष अवसरों के अनुकूल भाषा का प्रयोग। चतुर्थ, संक्षिप्तीकरण, लंबे अनुच्छेद को संक्षेप में लिखने की योग्यता। पंचम, किसी विषय पर दो एक अनुच्छेद स्वयं लिखना, जैसे विद्या, सत्संग, आश्रम आदि पर कुछ अनुच्छेद लिखना। षष्ठ, दिनचर्या का वर्णन। सप्तम, जीवन चरित्र में के रूप में कुछ वाक्य लिखना। अष्टम, संवाद लिखना। नवम, पत्र लिखना। प्रारंभिक स्तर पर रचना कार्य। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से 6, 7, 8 कक्षाएं प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं कही जाएंगी। इन कक्षाओं में अग्रलिखित रचना कार्य करना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस स्तर पर छात्रों को भाषा का स्वल्प ज्ञान रहता है। प्रथम, चित्रों पर प्रश्न करना। अध्यापक किसी पुष्प, पशु, विद्यालय, घर या बाजार आदि के चित्र पर सरल प्रश्न करता है और छात्र सरल वाक्यों में प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। इस स्थल पर प्रश्नों के उत्तर में आने वाले शब्दों का ज्ञान करा देना भी उचित रहेगा। द्वितीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। वाक्य में एक दो शब्दों का स्थान छोड़ दिया जाता है और छात्र उनमें उपयुक्त शब्द लिखता है। तृतीय, उपयुक्त शब्द चुनना। एक वाक्य लिखते हैं किंतु उनमें एक शब्द का स्थान छोड़ देते हैं और कोष्ठक में उपयुक्त शब्द के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द लिख देते हैं। छात्र सही शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करता है। चतुर्थ, दिए हुए शब्दों एवं उक्तियों से वाक्य रचना। पाठ्य पुस्तकों से शब्दों एवं उक्तियों को लेकर वाक्य बनाने की शिक्षा भी दी जा सकती है। पंचम, प्रश्नों का उत्तर लिखना। छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाएं और उनसे उन प्रश्नों का उत्तर लिखने को कहा जाए। षष्ठ, शब्द परिवर्तन। वाक्यों में आए हुए शब्दों को बदलकर दूसरे शब्द लिखने का अभ्यास भी कराया जा सकता है। सप्तम, उत्तरों का प्रश्न लिखना। उत्तर लिख दिए जाएं और छात्रों को उन प्रश्नों को लिखने के लिए कहा जाए जिनके वे उत्तर हों। मध्य स्तर पर रचना कार्य। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से मध्य स्तर पर उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं होंगी। कक्षा 9, 10, 11 और 12 में जब छात्र आते हैं तो वे संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं। वे संस्कृत की प्रवृत्ति से कुछ परिचित होने लगते हैं, किंतु अभी भी उनका भाव ज्ञान बहुत ही स्वल्प होता है। अतः इस स्तर पर उन्हें रचना कार्य की प्रारंभिक बातें ही सिखानी चाहिए। इस स्तर पर निम्नलिखित रचना कार्य उपयुक्त रहेंगे। प्रथम, चित्रों पर प्रश्न करना। द्वितीय, प्रश्नों के उत्तर लिखना। तृतीय, उत्तरों के प्रश्न लिखना। चतुर्थ, रिक्त स्थान पूर्ति। पंचम, उपयुक्त शब्द चयन। षष्ठ, प्रस्तुत शब्दों एवं उक्तियों के वाक्य रचना। षष्ठ, सप्तम, शब्द परिवर्तन। उपर्युक्त रचनाकार प्रारंभिक स्तर पर ही भी थे, ये माध्यमिक स्तर पर भी छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। अष्टम, विभक्ति एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना। नवम, उपसर्गों के प्रयोग द्वारा नए शब्दों का प्रयोग सीखना। दसम, वार्तालाप लिखना। दो मित्रों की वार्ता, पिता पुत्र की वार्ता तथा दो पशुओं की वार्ता को सरल वाक्य में लिखने का प्रारंभ किया जा सकता है। एकादश, पत्र लेखन। पत्र लेखन भी रचना की एक शैली है। संस्कृत की कक्षाओं में पत्र लेखन पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए संस्कृत में पत्र लिखने की परंपरा नहीं है। मध्य स्तर पर पत्र लेखन की कला की शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस स्तर पर केवल निजी एवं पारिवारिक पत्रों के लिखने की ही शिक्षा देनी चाहिए। द्वादश, अनुच्छेद रचना। किसी उपयुक्त विषय पर दो तीन अनुच्छेद लिखने की शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। त्रयोदश, संक्षेपण। किसी लंबे अनुच्छेद को संक्षेप में लिखने की कला को की शिक्षा का प्रारंभ मध्य स्तर से हो जाना चाहिए। उच्च स्तर पर रचना कार्य। मध्य स्तर को पार करते करते छात्रों को संस्कृत भाषा का कुछ ज्ञान हो जाता है और वे सरल संस्कृत में अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अतः उच्च कक्षाओं में निम्नलिखित ढंग से रचना कार्य होने चाहिए। प्रथम, रिक्त स्थान पूर्ति। द्वितीय, प्रश्नोत्तर। तृतीय, शब्द रचना। चतुर्थ, संवाद लिखना। पंचम, पत्र लेखन। क, निजी एवं पारिवारिक। ख, व्यवहारिक, यथा निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, आवेदन पत्र एवं स्मृति पत्र आदि। षष्ठ, संस्कृत पत्र संपादक के पास समाचार भेजना तथा घटनाओं का विवरण लिखना। सप्तम, डायरी लिखना। अष्टम, सारांश एवं संक्षिप्तीकरण। नवम, मौलिक रचना, कहानी, जीवनी, नाटक, आत्मकथा आदि। कुछ सावधानियाँ। संस्कृत में रचना कार्य की दृष्टि से निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रथम, सुलेख का अभ्यास होना चाहिए और शिक्षक को लिखावट पर बल देना चाहिए। द्वितीय, जहां तक हो सके रचना कार्य कक्षा में ही हो। तृतीय, छात्रों को शब्द रचना एवं वाक्य रचना का अभ्यास करने के बाद उनसे लिखने को कहा जाए जिससे अशुद्धियाँ ना हों। चतुर्थ, कक्षा के अनुकूल शब्द समूह एवं सूक्तियों को अध्यापक अवश्य प्रदान करें। पंचम, उत्तम एवं आदर्श रचनाओं का उदाहरण कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्र अच्छी रचना की प्रेरणा ले सकें। षष्ठ, विषय सामग्री छात्रों के वातावरण से ही ली जाए। अपने वातावरण में छात्रों की स्वाभाविक रूप से रुचि होती है। सप्तम, अध्यापक योग्य सामग्री का निर्देश दें, किंतु छात्रों को विचार प्रकाशन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अष्टम, विस्तार की अपेक्षा शुद्धता, सुगठन, क्रमबद्धता तथा सुसंबद्धता पर ध्यान देना चाहिए। नवम, अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के लिए उपयुक्त पुस्तकों का निर्देश स्वयं करे, जिससे छात्रों को पुस्तक से हर समय सहायता मिल सके। शिक्षण क्रम, मध्य स्तर पर किसी उपयुक्त विषय पर अनुच्छेद लिखना प्रमुख रचना कार्य है। प्रत्येक रचना कार्य में, विशेष रूप से अनुच्छेद लेखन में, पाठ योजना की रूपरेखा एवं चित्रण के क्रम का ढंग निम्नलिखित होगा। प्रथम, सामान्य प्रारंभिक बातें। द्वितीय, सामान्य उद्देश्य। तृतीय, विशिष्ट उद्देश्य। चतुर्थ, सहायक सामग्री। पंचम, पूर्व ज्ञान। षष्ठ, प्रस्तावना। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन आदि के लिए उपयुक्त विषय का निर्वाचन ही प्रस्तावना है। यह कार्य छात्रों की सहायता से हो तो अधिक अच्छा है। इसी स्थल पर उद्देश्य कथन पर कर दिया जाए। प्रस्तावना उपयुक्त प्रश्नों द्वारा भी हो सकती है। सप्तम, विषयोपस्थापन। क, अध्यापक द्वारा शब्दों एवं सूक्तियों का बताना। केवल वही शब्द जो प्रस्तुत रचना पाठ के लिए आवश्यक हैं, इन शब्दों का अनेक वाक्यों में प्रयुक्त करके छात्रों को बताना चाहिए। ख, लगभग 15-20 आदर्श वाक्यों को अध्यापक मौखिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिनमें संबंधित विषय का वर्णन होगा। इन वाक्यों में पठित शब्दों का ही प्रयोग होगा। वाक्यों को 2-1 बार दोहराया जाएगा। यह कार्य प्रश्नोत्तर विधि से भी हो सकता है। ग, छात्रों द्वारा रचना कार्य। छात्र अनुच्छेद अथवा पत्र लिखेंगे। अष्टम, संशोधन। यथासंभव 2-1 छात्रों से कक्षा में ही उनके निबंध पढ़वाकर शीघ्रता से उनका संशोधन और शेष कॉपियों को एकत्र करके अध्यापक द्वारा बाद में संशोधन पर आगे पुनः विचार किया जाएगा। नवम, गृह कार्य। अन्य विषयों के वर्णन में सहायक 10-15 नए शब्दों को बताकर छात्रों से उस विषय पर घर से अनुच्छेद लिखकर लाने को कहना। रचना पाठ योजना। प्रथम, विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा 8, वर्ग 10, विषय संस्कृत रचना, उपविषय गजह, कालांश पंचम, अवधि 40 मिनट, सामान्य उद्देश्य प्रथम। छात्रों की को इस योग्य बनाना कि वे प्रश्नों का उत्तर सरल वाक्यों में दे सकें। द्वितीय, उन्हें सरल एवं शुद्ध भाषा में मौलिक रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना। तृतीय, उन्हें अपने भावों को लिखित रूप से देने की योग्यता प्रदान करना। चतुर्थ, उन्हें स्वयमेव संस्कृत रचना करने की प्रेरणा देना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को हाथी पर कुछ वाक्य लिखने की योग्यता प्रदान करना। सहायक सामग्री, हाथी का एक चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र हाथी को अनेक बार देख चुके हैं और वे मातृभाषा में उसका वर्णन कर सकते हैं। प्रस्तावना, प्रथम, पशुओं में ऐसे कौन से पशु हैं जिन पर हम सवारी करते हैं। द्वितीय, इनमें सूंड वाला पशु कौन सा है। तृतीय, इस चित्र में तुम क्या देखते हो, चित्र दिखाकर। आज हम लोग हाथी के विषय में संस्कृत में कुछ वाक्य बोलने और लिखने की चेष्टा करेंगे। विषयोपस्थापन, अध्यापक श्याम पट पर निम्नलिखित शब्द लिखेगा और उसका अर्थ स्पष्ट कर देगा। छात्र भी इन शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। अध्यापक इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके भी मौखिक रूप से बता देगा। गजह, विशालम, ह्रस्वे, अक्षणी, पादह, स्तंभवत, दृढ़ा, स्थूलह, कणों, मुखादवही, निक्षीपति, सुंडया, पिवति, जिग्रति, स्वसिति, धीरह, गंभीरह, उपयोगः, वाहन कार्ये, वार यात्रायाम, मृगिया। छात्रों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिनका उत्तर तुम यथा संभव संस्कृत में दो। यदि संस्कृत में ना दे सको तो हिंदी में ही दो। छात्र के उत्तर ना देने पर अथवा हिंदी में उत्तर देने पर अध्यापक स्वयं संस्कृत वाक्य कह देगा। प्रथम, हाथी का चित्र दिखाकर, कह ऐसा पशुआ, उत्तर ऐसा गजा अस्ति। प्रश्न, कीदृश्यो पशु, उत्तर अयम एकः महाना महान पशुः अस्ति। प्रश्न, अस्य शरीरं कीदृशम्, उत्तर अस्य शरीरं अति विशालम् अस्ति। प्रश्न, अस्य देहे के द्वे अंगे ह्रस्व भवत, उत्तर अस्य देहे अक्षणी ह्रस्व भवत। प्रश्न, अस्य कति पादाः सन्ति, उत्तर अस्य चत्वारः पादाः सन्ति। प्रश्न, ते कीदृशः भवन्ति, उत्तर ते स्तंभवत दृढ़ा स्थूलाश्च भवन्ति। प्रश्न, अस्य कीदृशो कर्णो, उत्तर अस्य कणो सूर्पवत दीर्घो भवन्त। प्रश्न, अस्य दीघो दंतो कुत्र तिष्ठतः, उत्तर अस्य दीघो दो दंतो मुखाद वही तिष्ठतः। प्रश्न, सह कया खाद्य वस्तूनि मुखे निक्षिपति, उत्तर सह स्वसुंडयः खाद्य वस्तूनि मुखे निक्षिपति। प्रश्न, सह सुंडयः कानि अन्यानि कार्याणि करोति, उत्तर सह तया जलं पिबति जिग्रति श्वसति च। अध्यापक कथन, एवं हस्तस्य सर्वकार्य सुंडया एवं करोति। प्रश्न, कीदृशी अस्य प्रकृतियः, उत्तर अध्यापक कथन, गजः प्रकृत्या धीरः गंभीरश्च भवति, स्वबुद्धि प्रभावेश अयम जनानाम उपकारं करोति, मान अपमानं च जानाति। प्रश्न, सर्वेषु पशुषु तस्य कीदृशी स्थितियः, उत्तर सह सर्वेषु पशुषु बुद्धिमान बलवान च भवति। प्रश्न, प्राचीन काले अस्य कः उपयोगः आसीत्, उत्तर प्राचीन काले युद्धेषु विशेषतया अस्य उपयोगः आसीत्। प्रश्न, केषु अन्येषु कार्येषु अस्य उपयोगः भवति, उत्तर वाहन कार्ये वर यात्रायां मृग यादिषु च अन्योपयोगः भवति। अध्यापक कथन, गजम भारतवर्षस्य दर्शनीयः सर्वश्रेष्ठस्य पशु अस्ति, अस्य विशालं शरीरं गंभीरः स्वभावः मन्दागतिः अनुशासन पालनं च लोक स्वभावी मुखम् आवर्जयति। कक्षा कार्य, श्याम पट पर लिखे हुए शब्दों का उपयोग करते हुए गजह शीर्षक देकर संस्कृत में कुछ वाक्य लिखो जिनमें हाथी का वर्णन हो। संशोधन, अध्यापक दो एक छात्रों को निबंध पढ़ने को कह देगा और स्वयं उनका संशोधन करता जाएगा, शेष कापियों को वह बाद में देख लेगा। गृह कार्य, हिमालयः उत्तरस्यां दिशि, वनस्पतयः अनेकः, वन्य पशवः, तीर्थ स्थानानि तपोवनानि, औषधयः विशालः लभ्यन्ते सन्ति निवसन्ति प्राप्यन्ते। शब्दों की सहायता से हिमालय विषय पर संस्कृत में कुछ वाक्य लिखो। रचना पाठ योजना, द्वितीय, विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, दिनांक, कालांश षष्ठ, कक्षा द्वादश, वर्ग अ, अवधि 40 मिनट, विषय संस्कृत रचना, शीर्षक वर्षा कालः। सामान्य उद्देश्य, प्रथम, छात्रों में वार्तालाप के द्वारा विशेष अवसरों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना। द्वितीय, सूक्तियों के समुचित प्रयोग की शिक्षा देना। तृतीय, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देने की के योग्य बनाना। चतुर्थ, किसी भी विषय का विस्तार कर सकने तथा संक्षिप्तीकरण करने की प्रतिभा का सृजन करना। पंचम, विविध विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने भावों की संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति कर सकने की सामर्थ्य प्रदान करना। षष्ठ, संस्कृत भाषा के उच्चारण और लेखन की शक्ति का विकास करना। सप्तम, अनेक प्रकार की वाक्य संगठना भावानुकूल कर सकने की प्रवीणता उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य, प्रथम, भारत में कृषि के लिए एवं जनजीवन के अस्तित्व के लिए वर्षा का महत्व समझाना। द्वितीय, वर्षा ऋतु में होने वाले वातावरण के आनंदमय परिवर्तन के वर्णन की शक्ति देना। सहायक सामग्री, वर्षा काल में वन व ग्राम की शोभा के चित्र द्वय तथा कक्षोपयोगी अन्य सामान्य उपकरण। पूर्व ज्ञान, प्रथम, छात्र वर्षा के महत्व और उसके आगमन के मासों का सामान्य ज्ञान रखते हैं। द्वितीय, छात्र वर्षा काल में होने वाले वसुंधरा के दिव्य परिवर्तनों से भी परिचित हैं। तृतीय, छात्र षड ऋतियों ऋतुओं का भी साधारण ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना, प्रथम, एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। द्वितीय, वर्षे कति ऋतुवः भवन्ति। तृतीय, षड ऋतुवानां कानि नामानि सन्ति। चतुर्थ, ग्रीष्मतो पश्चात् को नाम ऋतु प्रारंभते। पंचम, अयम ऋतु वर्षा इति कथम कथ्यते। उद्देश्य कथन, ग्रीष्मतो सूर्यस्य प्रचंडा किरणा भूमि दहन्ति, तापेन सर्वे प्राणिना विकालाः जायन्ते जलासे जलायेषु जलाभावा वर्तते, जीवनं दुस्सह दुर्वहं च भवति, तदेव आकाशे मेघः एकत्री भवन्ति, वर्षन्ति च भूमौ। अयमेव वर्षा ऋतुः, एतं वर्षा ऋतुं समाधिकृत्य वयमद्य एकां निबन्धरचना विधास्यामः। विषयोपस्थान, अध्यापक वर्षा ऋतु में आकाश व वन की शोभा वाले प्रथम चित्र का छात्रों के सम्मुख प्रदर्शन करेगा। प्रश्न, वर्षतो आकाशे के समुद्भवन्ति। उत्तर, वर्षतो आकाशे मेघः समुद्भवन्ति। द्वितीय, ते किं कुर्वन्ति। उत्तर, ते तत्र इतस्तः विचरन्ति। तृतीय, तेषां रूप वर्णनं कुरु। उत्तर, परस्परं संघर्षणं प्राप्य घोर गर्जनां कुर्वन्ति। अध्यापक कथन, एकेन कविना उक्तम्, क्व चित्र प्रकाशम क्वचिद प्रकाशम नवः प्रकीर्णां बुधरं विभाति, क्वचित् क्वचित् पर्वत सन्निरुद्धम् रूप यथा शांत महावर्णस्य। प्रश्न, ते विचरंत कज्जल पर्वता इव प्रतीयते। आकाशे विद्युत कथम भाति, यदा कदा प्रश्न, आकाशे विद्युत कथम भाति। उत्तर, यदा कदा तेषु मेघेषु स्फुरन्तो विद्युच्चितम् आवर्यति। प्रश्न, घनः भूम्यः किं प्रयच्छन्ति। उत्तर, सूर्य तापत्यो भूम्यः ते मेघा शीतल जल प्रयच्छन्ति। प्रश्न, जलदारः ता कथं प्रतीयते। उत्तर, तः अनवरतं भूमौ पतितः जलदारः मेघ मंडपाद आलंबितः कौशे रज्जवैव प्रतीयते। प्रश्न, चित्रे वनस्य शोभां कथं दृश्यते। वर्षतो प्रकृते शोभा अद्भुता जायते। प्रश्न, वर्षतो वनस्पत्या कथं भान्ति। उत्तर, द्रुमः वल्यरश्च हरितः प्रफुल्लिताश्च वर्तते। प्रश्न, अस्मिन् ऋतौ भूमौ कानि अंकुरितानि भवन्ति। उत्तर, भूमौ नवानि बीजानि अंकुरितानि भवन्ति। प्रश्न, भूमि कथं विभाति। उत्तर, सर्वत्रैव पृथ्वी हरित दुकुलावृत्तायुव शोभते। प्रश्न, समीरं कथं वहति। उत्तर, समीरः शीतलः सुरभितः भवति कदाचित् रभसः पुनश्च मन्दं मन्दं वहति। प्रश्न: नवीनं जलं पृथ्व्यां कथं प्रवहति? उत्तर: वर्षासु नवीनजलं निर्झरान् सारांसि नदीश्च प्रपूरयति। द्वितीय चित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रश्न: चित्रं विलोक्य ग्रामश्च शोभां वर्णयत्। उत्तर: वर्षतो ग्रामीणां क्षेत्राणि सस्यसां लानि भवन्ति। प्रश्न: कृषकः किम् अनुभवन्ति? उत्तर: कृषकः मोदमग्ना जायन्ते। प्रश्न: चित्रे ग्रामस्य मार्गा कथं दृश्यन्ते? उत्तर: यद्यपि वर्षतो ग्रामीण मार्गः पाकिला भवन्ति तत्र क्रमयः उत्पद्यन्ते पुनरपि अन्नो उत्पादनस्य आशया प्रमुदिता एवं सर्वे भवन्ति। अध्यापक कथन: निगमितं वाल्मीकिना रामायणे यत् प्रथम मत्तः गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः वनेषु विश्रान्तान्तरः मृगेन्द्रः रम्यः नगेन्द्रः बिभृतः नरेन्द्रः प्रकर्डितो वारिधरेः सुरेन्द्रः। द्वितीय बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समासन्ति नद्यः घनः मत्तगजः वनान्तः प्रियविहीनः शिखिनः प्लवन्नः। संशोधन: अध्यापक कुछ छात्रों की पंजिकाओं में लिखित निबंध को पढ़वा कर सुनेगा, कुछ छात्रों के लेखों में संशोधन भी करेगा, अन्य छात्रों की पंजिकाओं को एकत्र कर संशोधनार्थ ले जाएगा। गृह कार्य: इस प्रकार वसंत ऋतु पर एक निबंध लिखो।